नमस्ते, मैं हूँ शुचि और स्वागत है आपका काव्य रचना कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं वार्ता पे। रवींद्रनाथ ठाकुर या रवींद्रनाथ टैगोर विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वो एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वो एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुर बाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। जब वो छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और चूंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे, इसलिए उनका लालन पालन नौकरों चाकरों द्वारा ही किया गया। वो 13 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। बचपन से ही उन्हें लिखने का बहुत शौक था। 8 साल की ही उम्र से उन्होंने कविताओं की रचना शुरू कर दी थी। आगे चलकर टैगोर देश के एक महान कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और निबंधकार बने। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। सन 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। टैगोर परिवार बंगाल रेनेसा के अग्र स्थान पर था। वहाँ पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिमी संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। रवींद्रनाथ टैगोर बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्हें कला की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल में हुई। वो वकील बनने की इच्छा से लंदन गए, लेकिन वहाँ से पढ़ाई पूरी किए बिना ही वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। उनका मानना था कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक माहौल में ही पढ़ाई करनी चाहिए। उनकी ज्यादातर रचनाएं आम आदमी पर केंद्रित होती थी। उनकी रचनाओं में सरलता है, अनूठापन है और दिव्यता है। गुरुदेव ने बांग्ला साहित्य के जरिए भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान डाली थी। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई शाखा हो जिसमें उनकी रचना ना हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला, सभी विधाओं में उन्होंने रचना की थी। उनकी प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, गीतमाल्य, कथा ओ कहानी, शिशु, शिशु भोलानाथ, कर्णिका, शर्णिका, खेया आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैल गई। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की थी। रवींद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत ये आभास कराते हैं कि मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई थी। उनकी लिखी गीतांजलि नाम की कविता से उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये उनकी आखिरी रचना थी और गीतांजलि के लिए उन्हें साल 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वर्ष 1915 में नाइटहुड का पद प्रदान किया, जिसे रवींद्रनाथ ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया। उनके पिता देवेंद्रनाथ उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रवींद्रनाथ को वर्ष 1878 में इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। सन 1880 में बिना लॉ की डिग्री के वो बंगाल वापस लौट आए। वर्ष 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। इंग्लैंड से वापस आने और अपनी शादी के बाद से लेकर सन 1901 तक का अधिकांश समय रविंद्रनाथ ने सियालदह स्थित अपने परिवार की जागीर में बिताया। वर्ष 1898 में उनके बच्चे और पत्नी भी उनके साथ यहाँ रहने लगे थे। उन्होंने वहाँ रहकर ग्रामीण और गरीब लोगों के जीवन को बहुत करीबी से देखा था। वर्ष 1891 से लेकर 1895 तक उन्होंने ग्रामीण बंगाल के पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कथाएं भी लिखी। वर्ष 1901 में रवींद्रनाथ शांति निकेतन चले गए। वो यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण किया। यहीं पर उनकी पत्नी और दो बच्चों की मौत भी हुई। उनके पिता भी सन 1905 में चल बसे। इस समय तक उनको अपनी विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी भी होने लगी थी। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया था। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो सर्वकालिक संपर्क है, उनकी रचनाओं में वो अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आती है। टैगोर और महात्मा गांधी जी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी जी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। दोस्तों, ये है काव्य रचना कार्यक्रम जिसे आप सुन रहे थे वार्ता पे, और ये है ग्लिट्स डिजिटल प्रोडक्शन।